आए हैं आप लोग के मंदिर में तो प्रारंभ करें वेट करें। आपने आज बताया कि परदर्गे से अपने को भिन्न देखने से राग उत्पन्न ही नहीं होता है, क्या इसका ऐसा होगा कि ज्ञान और राग में प्रज्ञा श्रेणी मानना जरूरी नहीं है, सिर्फ देह से एकत्र बुद्धि तोड़ने से ही आत्म प्राप्ति हो जाएगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये अच्छा पकड़ा उन्होंने। वो ये कहते हैं कि ज्ञान और राग से वेद ज्ञान करना जरूरी है कि नहीं, क्या अकेले देह से और भिन्न आत्मा है ऐसा जानने से ही बीच रागी हो जाएंगे, तो राग से भिन्न जानने की क्या जरूरत है? मैंने तो छठी गाथा के आधार से बात की थी कि उसमें ऐसा परद्रव्य से भिन्न उपास्य होता हुआ शुद्ध कहलाता है। जिसने ये प्रश्न लिखा है मैं उससे पूछता हूँ, जब परद्रव्य से भिन्न अपने को देखेगा तो चैतन्य मात्र देखेगा कि रागी देखेगा? यदि अपने को रागी देखेगा, यानी परद्रव्य तो मैं सही तो मेरा नहीं है लेकिन राग तो मैंने किया है वो मेरे ही है, स्वभाव दृष्टि से है, स्वभाव की बात है, तो फिर उसने अपने को परद्रव्य से भिन्न देखे नहीं। वास्तव में एक पार्टी अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वही हर लेवल के भेद ज्ञान में खड़ा हुआ होता है। मकान से भिन्न है तो भी मकान में से भिन्न मैं क्यों हूँ? क्योंकि मकान जड़ है और मैं चेतन, तो चेतन ने तो खड़ा किया। शरीर से भिन्न मैं क्यों हूँ? क्योंकि शरीर जड़ है और मैं चेतन, तो चेतन खड़ा हो गया। तो प्रैक्टिकल में तो जिसको चैतन्य से भिन्न आत्मा लक्ष्य में आएगा, वास्तव में उसको राग उत्पन्न हो गई नहीं। यही विधि है ईतरागी होने की। परंतु समझाने के लिए जैसे सात तत्वों का निर्णय करना जरूरी है, तो राग की रुचि टूटे, राग में एकत्र बुद्धि टूटे, इसके लिए राग से भिन्न आत्मा चैतन्य स्वरूप है उसकी भी बात आती है। तो विचार दशा में प्रयोग विधि में तो आप दोनों प्रकार से क्या जितने लेवल बताए हैं, परद्रव्य और स्त्री पुत्र और शरीर और राग और समझ लीजिए छंद की पर्याय, उन सब से दिलचस्प विचार करें, अभ्यास करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एक प्रश्न है, आपने बताया कि विचार उपयोग के अधीन है, ऐसा पंडित प्रणव जी ने लिखा है, कृपया इसे थोड़ा स्पष्ट कीजिए। ये नौवे अधिकार में यहाँ सम्यक दर्शन के लक्षणों की चर्चा है और तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शनम इसको पंडित जी ने मुख्य किया है, और ये लक्षण में अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोष नहीं लगते हैं, तो ये निर्दोष लक्षण है, ऐसा उन्होंने वहाँ चार पांच पेजों में इसका बहुत सुंदर खुलासा है। उसी के अंतर्गत ये सृष्टि की तरफ से प्रश्न उठा है कि जब सम्यक दृष्टि विषय कषाय में मान लो उनका उपयोग है, युद्ध कर रहे हैं, विषय भोग भोग रहे हैं, दुकान पे बैठे हैं, इत्यादि इत्यादि जब है तो भी सम्यक दर्शन तो है और उनको तत्व का विचार ही नहीं है, तो उस समय तत्वार्थ सिद्धांत कैसे होगा? यानी लक्ष्य तो है, लक्षण नहीं। सिद्ध के हिसाब से लक्ष्य माने सम्यक दर्शन तो है, लक्षण माने तत्वार्थ सिद्धांत नहीं है, ऐसा सिद्ध को महसूस होता है, क्योंकि उस समय तत्व का विचार ही नहीं कर रहा। उस संदर्भ में चोडरमंदी साहब ने ये खुलासा किया है कि विचार तो उपयोग के अधीन है, यानी आपका उपयोग अगर धंधे व्यापार में जाएगा तो धंधे व्यापार के विचार चलेंगे, और जो श्रद्धान है वो प्रतीति के अधीन है। तो जब श्रद्धान को समझ लो एक जैसा निर्णय हो गया वैसी प्रतीति 24 घंटे चला करती है, तो ये बहुत कठिन बात भी नहीं है। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि कोई आदमी पैसा कमाने के लिए परदेश जाता है तो वहाँ पैसे संबंधी, रहने संबंधी, फिरने संबंधी नाना प्रकार के विचार उसको होते हैं, तो भी ये स्थान मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, और मेरा घर तो वहाँ है जहाँ मैं रहता हूँ, इसका विचार नहीं करना पड़ता, तो भी ऐसी प्रतीति उसको निरंतर चलती रहती है। यानी भेद ज्ञान के लिए भी, सुनिए ध्यान से, भेद ज्ञान के लिए भी आपको 24 घंटा भेद ज्ञान का विचार करना पड़े ऐसा नहीं है। ये तो अभ्यास दशा में, निचली दशा में तत्व निर्णय करने के लिए भेद ज्ञान अभी कलम आएगा। भेद ज्ञान जब लो भलो तब लो मुकदी न हो, ये आएगा अभी। वास्तव में विचार का नाम भेद विज्ञान नहीं है, विकल्पों का नाम भेद विज्ञान नहीं है। भेद विज्ञान तो निज को निज, पर को पर जानने रूप जो परिणति ज्ञान में सहज चलती है। मैं श्रद्धा की बात नहीं करता, तत्वार प्रधान की बात अलग है, वो तो प्रतीति वाली है, वो ज्ञान प्रधान सम्यक दर्शन की बात है। लेकिन ज्ञान में भी जानना बना रहता है ना, अपने को अपने रूप जानना, पर को पर रूप जानना, लेकिन वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कैसे कहलाएगा? तो इस तरह ज्ञान में जो पहले निर्णय किया था, फिर अनुभव पूर्वक वैसी धारा निरंतर चलती है, वास्तव में वो वेद ज्ञान धारा। तो विचार उपयोग के अधीन है, और तत्व का जो समझ लीजिए श्रद्धान है, वो प्रतीति रूप है, ऐसा दोनों में अंतर समझना चाहिए।
प्रश्न है, यहाँ प्रश्न है, सच्चे देव साथ गुरु की श्रद्धा का क्या अर्थ होता है? क्या ऐसी श्रद्धा से अभेद रत्नत्रय की प्राप्ति हो सकती है? देखो ऐसा है, पहले तो सच्चे देव साथ गुरु की श्रद्धा व्यवहार श्रद्धा समझ लो, फिर व्यवहार से परमार्थ में कैसे जाते हैं वो विधि समझ लो, तो दोनों ही बातें समझ में आ जाएंगी कि व्यवहार को त्याग कर जीव परमार्थ में जाता है। ऐसे पहले देव साथ गुरु की श्रद्धा निर्मल अगर न हो, उनके स्वरूप का ज्ञान न हो, पीतरा की सर्वज्ञ हितोपदेशी को देव कहते हैं, और तुम्हारे उनके द्वारा कही गई वाणी और उस परंपरा में आचार्यों द्वारा गूंथे गए शास्त्र, वो सब जिनवाणी आगम है, उस आगम का कोई प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणों से खंडन नहीं कर सकता, और वो जो आगम की वाणी है सब जीवों की हितकारी होती है, त्रैकालिक वर्तती रहती है, ऐसी वो जिनवाणी है और आत्म का हित करने में निमित्त बनती है, वो जिनवाणी होगी। और गुरु भी ऐसे होते हैं, जिनवाणी में स्वरूप गुरु का लिखा है, विषय आशा वसाती तो निरारंभो अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रश्न, यानी जिनके ऋषियों की आशा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो जिसने राग देश वाली विनती आती ना, उसमें ये श्लोक को अनुवादित कर दिया गया है, ऋषियों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को, बहुत माने ये बहुत मार्मिक चीज उन्होंने लिखी है गुरु के विषय में लिखी। तो इस तरह से तो व्यवहार जब हम निर्दोष देव साथ गुरु का श्रद्धान करेंगे तो ग्रीत मिथ्यात्व तो उसमें दूर हो जाता है, अब तत्व वाला मिथ्यात्व तो बचता है। सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान जब तक नहीं होगा, अरे सात तत्व का श्रद्धान होने पर ही मिथ्यात्व तो नहीं जाता, जब तक सात तत्व के श्रद्धान में स्वर का भेद ज्ञान न हो, और स्वर के भेद ज्ञान से भी नहीं जा पाएगा जब तक अभेद अनुभव न हो। कई काल में लेकिन ध्यान रखना इनमें क्रम है। टोडर मर्जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 9वें अध्याय में एक बात लिखी है कि ये चार बातों का निर्णय निरंतर करते रहना तब तक जब तक कि आत्मानुभूति प्रकट न हो जाए, और उसमें क्रम ये रखना, पहले सच्चे देव साथ गुरु का निर्णय करना, मोक्ष मार्ग के सच्चे देव साथ गुरु का निर्णय करना, दूसरी बात उनके द्वारा बताए गए सात तत्व का स्वरूप जानना, उसमें हे गे उपाधेय को समझना, और तीसरी बात सात तत्व का प्रयोजन है स्वर पर को जानना, स्वर का भेद विज्ञान करना, और सुपरमेन विज्ञान का प्रयोजन है अभेद ज्ञान स्वभाव की अनुभूति करना। इसको जब तक प्रकट न हो जाए अनुभूति, तब तक क्रम से इसी का अभ्यास रखना। अगर इसका अभ्यास नहीं रखते हो और ये क्रम को तोड़ देते हो तो तुम्हारी जितना भी ज्ञान है वो चतुराई की बातें हैं, आत्म सिद्धि की बातें नहीं।
ऐसा लिखा पंडित जी,
समझ में आया ना? तो ये इसमें अब परमार्थ देव साथ गुरु क्या है, जब हमने देव का स्वरूप का निर्णय किया तो ये जाना हमने उनके निर्णय से के जो जान दी अरहंतम दबत्त गुणत्त पद्य तेज सो जान दी अपानम मोह तसु जादी तस लें मोह खलु जादी तस लें। यानी जो अनंत भगवान को द्रव्य पने से, जरा ध्यान देना, द्रव्य से नहीं लिखा है, द्रव्य पने से, गुण से नहीं लिखा है, गुण पने से, पर्याय से नहीं लिखा है, पर्याय पने से, ये पना लग जाने से वस्तु वास्तव में दिखी जाए उसका त्रैकालिक धर्म सामने आ जाता है। द्रव्य भी त्रैकालिक हो गया द्रव्य पने से, गुण भी त्रैकालिक हो गया गुण पने से, और पर्याय में भी पना लगाते ही साथ पर्याय भी त्रैकालिक हो गई पर्याय पने से, और तीनों मिलकर के अखंड द्रव्य हो गया। ऐसे अखंड द्रव्य का स्वरूप हम उनमें देखते हैं और वो ही स्वरूप हमें वहां से रिवर्स होके अपने में देखना, समझ आएगा नहीं? बस जैसे दर्पण देखते हैं, आपने दर्पण देखा कि नहीं भाई, देखा कि नहीं आपने? रोज देखते हो दर्पण, रोज देखते हो दर्पण, एक ही बार देखा जाता है जब खरीदा जाता है, एक ही बार दर्पण बिल्कुल नहीं देखा जाता है, दर्पण में अपने को देखा जाता है। बात तो ऐसे ही है कि नहीं? तो रोज दर्शन करते हो कि नहीं? हाँ रोज दर्शन करते, पर कैसा दर्शन किया? अरे ऐसा दर्शन करना था कि पीवत पीयूष जो रोग जाए त्यों तुम अनुभव के भव, भव का नाश होता है जनंद के दर्शन से। अरे छाया ऐसा वो प्रकृति है जो निधत्ती और निकाचित प्रकृति है, वो निधत्ती निकाचित प्रकृति भी जिनेन्द्र देव दर्शन से मिट जाती है, बिखर जाती है, क्षय को प्राप्त हो जाती है, ऐसा है। इसलिए जिन दर्शन की बड़ी महिमा है, जिन दर्शन कहो निन्द दर्शन कहो एक ही बात है, मगर व्यवहार में भेद में जिन दर्शन है, लेकिन उसी को जब अंतर में समाहित करके अंतर्दृष्टि से अखंड आत्मा के दर्शन हो गए तो वो निज दर्शन, वो निज देवता का दर्शन है और वो जिनेन्द्र देवता का दर्शन है। आगे 44 नंबर का कलश आता है, उसमें आया अपने स्वयं देवता का स्वरूप आया, अचिंत शक्ति स्वयं देव चिन्ह मात्र चिंता मणि रेसे अस्मात सर्वार सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। ज्ञानी के अन्न परिग्रह से क्या लेना देना है? जिसने अपने आत्मा को जान लिया, जो सर्व समस्त प्रकार की सिद्धियों का दाता है, उसे सब कार्य की सिद्धि होती है, जिससे मोक्ष की सिद्धि हो जाए, बाकी सिद्धियां तो उसमें कर देते हैं, पर कोई बड़ी है ही नहीं कोई सिद्धि। इसलिए ये देव का स्वरूप जहाँ जाना तो निश्चय में आ गए, और निश्चय में वाणी का जो जिन वाणी में कथन है आत्मा के विषय में, वो कथन के भाव को पहचान कर अपने अंदर में अनुभव किया तो आगम को जान लिया, समझ में आया? और जिन गुरुओं ने तीन कषाय का अभाव किया है और प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था में वे कदाचित झूल रहे हैं, लेकिन जिनका लक्ष्य एकमात्र कहना चाहिए मुक्ति पाना है, ये उनका लक्ष्य है विकल्पात्मक अवस्था में। निर्विकल्प में तो कोई लक्ष्य की बात नहीं है, निर्विकल्प में तो अनुभव का अनुभव में वर्तना ही उनका मुख्य कार्य है और कुछ कार्य है नहीं। ऐसे मुनि राजाओं के स्वरूप को जानकर वो अपना जो अनुभव है उसको इतना स्थिर करना है, उसको लीनता को इतना बढ़ाना कि तीन कषाय का अभाव हो जाए और मेरे पर्याय में भी वो मोक्ष मार्ग का साधक दशा जो उत्कृष्ट जाति की श्रेष्ठ साधक दशा कहलाती है, वो मुनि दशा कहलाती है। साक्षात मोक्ष मार्ग की वो साधक दशा है, वो दशा अपने में प्रगटा हुए तो निज देवता के भी दर्शन हो गए और जिनवाणी की अनुभूति अंदर में हो गई भाव सुप्रियान रूप, और उस मार्ग पर चलने वाले निर्गंत मुनिराज का स्वरूप जाना और वो स्वरूप पर अपने में अंतर में उतारने की कोशिश की तो देव सात गुरु ये तीनों परमार्थ हो गए, निश्चय हो गए, और निश्चय हमेशा अपने में घटता है, व्यवहार हमेशा पर में घटता है, इसलिए इसमें दोनों घट जाते हैं।
और पढ़े एक और
है आज, अभी तो ये दो आए हैं, बड़े राकेश जी बहुत से जी गए हैं, अपन बांट लेंगे सब जन। शास्त्र किसे कहते, मैंने बताया था आज आपको, शास्त्र का लक्षण भी बताया था, आप तो वंग मन लंगम और दृष्टि का विरोध कम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घटना। क्या लिखा कि आप तो वंग आपके द्वारा कहा गया हो, शास्त्र की परिभाषा सुन लो जरा। अभी इसमें एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन और किया है, क्या मिथ्या दृष्टि के लिखे हुए पुस्तक वगैरह शास्त्र कह सकते हैं कि नहीं? बहुत गजब बात लिखी है, हमें बहुत उसकी गजब और समाधान करने वाला हूँ, सुन लेना जरा। आयोजन में क्या कहा कि आपके द्वारा कहे गए हों और जो प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणों द्वारा खंडित ना हो, उल्लंघन किए जाने योग्य ना हो, तत्व का उपदेश देने वाले हों, सबके लिए तत्व का उपदेश देने वाले हों, और कापत घटनम यानी जो विपरीत मत है उसका खंडन करने वाला हो, उसका नाम शास्त्र है। ये समंत्र भद्राचार्य की परिभाषा है शास्त्र की, समझ में आएगा नहीं? और सीधे सीधे शब्दों में कहो कि जिस निरूपण में वीतराग का और कहना चाहिए केवल ज्ञान या ज्ञान की पूर्णता का अभिप्राय छिपा हो, वे सब शास्त्र ही है। ख्याल में ना, ये अभिप्राय के पोषक शास्त्र ही होते, ये उनका स्वरूप है। दो ही पहचान है जिन शास्त्र की, एक तो वीतरागता का पोषक होना चाहिए और दूसरे सम्यक ज्ञान की पूर्णता को पाने का जिसमें लक्ष्य बताया गया हो, और ये सच्चे शास्त्र है और इसके द्वारा आत्मा का हित होता है। अभी ये आखिरी बात इसमें जो लिखी इन्होंने, क्या मिथ्या आम, क्या मिथ्या दृष्टियों के, नहीं तो और पहले इन्होंने ये लिखा, सम्यक दृष्टि की वाणी को भी शास्त्र कह सकते हैं कि नहीं? पहली बात तो एक बताओ कि वाणी के परंपरा वक्ता कौन है? अस मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के पहले जब मंगलाचरण किया जाता है तो एक प्रतिज्ञा की जाती है कि इस ग्रंथ के मूल कर्ता कौन है? सर्वज्ञ देवा। और तदुत्तर ग्रंथ कर्ता कौन है? गंधर्व देवा। और तेषाम वचनानुसार आचार्य देवा। और उन्हीं के वचनों को तुम भी खुलासा करना लिख रहे हो तो वह भी उन्हीं का ही शास्त्र कहलाएगा, तुम्हारा नहीं कहलाएगा। क्या कहा? उन्हीं का कहलाएगा, तुम्हारी तो उसमें जो चीज लिखी उसको खुलासा करना कहलाएगा। और शास्त्र वाकई में जो होता है, देव शास्त्र गुरु जो होते हैं, ये निर्गंध गुरु का ही शास्त्र होता है, और उसकी परिभाषा को जो भी व्याख्या करे और जो भी उसको लिखे वो भी शास्त्र की श्रेणी में इसलिए आता है कि उसमें वही लिखा गया है जो आचार्यों ने परंपरा से लिखा है, हमने उस परंपरा के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा है। और वर्तमान में भी किसी भी ज्ञानी की वाणी में अगर विरोध खड़ा हो जाए तो एक ही उपाय है उस विरोध को मिटाने का, पूर्वाचार्यों की परंपरा से विरोध नहीं आना चाहिए। अगर पूर्वाचार्यों की परंपरा में विरोध होगा तो अपने यहाँ वो न्याय लागू है जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय में लागू है। क्या कि नीचे की अदालत का अगर निर्णय किसी को पसंद ना आवे तो वो आगे की अदालत में अपील कर सकता है, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, और हाई कोर्ट में भी निर्णय पसंद ना आवे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पसंद हो तो धर्म छोड़ सकता है। और क्या है? देश छोड़ सकता है, लेकिन यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय चलेगा, और सुप्रीम कोर्ट वाला न्यायालय कुंद बुंद का, और हाई कोर्ट है अमृत चंद्राचार्य और उनके टीकाकार आचार्यों का है, और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय लो तो जो ज्ञानियों ने भी लिखे हैं, छोटे छोटे जो ग्रंथ लिखे हैं टोडरमल जी वगैरह ने जो लिखे हैं, वे सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और जो सम्यक दृष्टियों द्वारा लिखे गए हैं वे समझ लेना तहसील वगैरह के छोटे छोटे न्यायालय है, मगर न्यायालय में न्याय होता है और न्याय सबका एक सा होता है, अगर कोई चूक जाए तो ऊंचे न्यायालय में उस चूक को मिटाया जाता है, ये सही होती है। इसलिए सम्यक दृष्टि ने भी कोई अगर व्याख्या की है, कोई उनके द्वारा ग्रंथ की व्याख्या की गई है, तो चूंकि वो जिनागम अनुसार ही होती है इसलिए वो भी शास्त्र की श्रेणी में आती है। और यहाँ लिखा क्या मिथ्या दृष्टि के लिखे हुए पुस्तक भी शास्त्र कहला सकते हैं? ये तो पूछना ही था तुमको जब इतनी बात समझ में आ रही है, है? क्या शास्त्र जो होते हैं वो वाकई में आत्मज्ञानियों के द्वारा लिखे जाते हैं। आत्मा का ज्ञान न हो वो क्या लिखेगा, क्या लिखेगा? अरे उसकी मान्यता में कर्ता बुद्धि बैठी हो तो वो जो लिखेगा वो कर्ता बुद्धि के पोषण की बात लिखेगा, और उससे स्वयं संसार में भटक रहा है और तुम्हारा क्या करेगा, तुमको भी संसार में भटकाएगा। और एक और बड़ी भारी बात है शास्त्र की पहचान में ध्यान रखना, शास्त्र जिनागम के जितने भी हैं उनका चिन्ह स्यात पद है, स्यात पद न हो तो वो कथन झूठा है। क्या कहा? अरे अकलंक देव ने ये लिखा है कि जो सापेक्ष नया सम्यक, निरपेक्ष नया मिथ्या। हाँ, और निरपेक्ष नया मिथ्या और सापेक्ष सम्यक पे वस्तु अर्थ कर, वो वस्तु के अर्थ को करने वाला होता है, इसलिए निरपेक्ष वाणी होती नहीं। सुन लो जरा, वस्तु का स्वरूप निरपेक्ष रहता है, सापेक्ष नहीं होता है। कोई भी वस्तु का स्वरूप सापेक्ष नहीं होता है, लेकिन उस निरपेक्ष वस्तु का कथन कभी निरपेक्ष नहीं होता है, सापेक्ष ही होता है। आप कहो निरपेक्ष नहीं तो है,
क्या कहा?
निरपेक्ष नहीं तो है। अरे भाई निरपेक्ष नहीं भी सापेक्ष है, वो निरपेक्ष भी एक अपेक्षा है।
क्या कह रहे
हैं? नहीं की अपेक्षा है, वो कोई प्रमाण वस्तु नहीं हो गई, वो एक नए की अपेक्षा से कथन है, वो निरपेक्ष नहीं भी। और सापेक्ष नहीं तो प्रकट ही कह रहा है कि सापेक्ष हम ये अपेक्षा से कह रहे हैं। इसलिए वाणी एक मंगलाचरण लिखा है टोडरमल जी ने पंच पुरुषार्थ सिद्धि पाई की टीका में, उस मंगलाचरण में लिखा वाणी बिन बेन न बने, वाणी बिना वचनों के नहीं बनती है, और बेन बिना बिन नैन, और वचन जो है बिना नय के नहीं बनते हैं। बेन बिना बिन नैन, नैन बिना ना बाण बन, और नय के बिना वाणी नहीं बनती है। नमो वाणी बिन बैन, मैं उस वाणी को नमस्कार करता हूँ जिसमें वचन ही नहीं होते, यानी उस निरक्षरी वाणी को नमस्कार। इसलिए मिथ्या दृष्टि के कोई शास्त्र होते ही नहीं
है। सवाल ये है कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मैंने कुछ लिखा है, मैंने पुस्तक लिखी है, पुस्तक में जो वाच्य है वो सब सर्वज्ञ अनुसारी है, तो भी उसमें अनेक अर्थ है, मैंने त्याग पद है, मेरा पुस्तक को आप भी उसमें चेक करेंगे तो उसमें कोई
हाँ
वो
देखो एक बात बता दूं आपको क्लियर कट, जापान का माल आप बेचने लगे तो आप जापान के वो मुखिया नहीं बन गए, आप केवल एजेंट हो, और एजेंट का इतना ही कर्तव्य है कि जैसा माल हो वैसा माल दिखावे, दिखावे दिखाने से वो मालिक नहीं बन जाएगा, एजेंट ही रहेगा। ऐसे अपन जितने भी दिखाने वाले हैं वे दिखाने वाले रह सकते हैं, उस मालिक के कर्ता नहीं बन सकते, उस मालिक के कर्ता नहीं बन सकते, क्योंकि माल तो जिनेंद्र की फैक्ट्री में पैदा होता है, और उसको फिर आगे संभालने वाले जो है छोटी छोटी फैक्ट्री चलाने वाले आचार्यों की परंपरा होती है। और हम कह रहे हैं, आपने भी बोला ना कि हमने उन आचार्यों के अनुसार सब कहा, जब आचार्यों के अनुसार कहा तो आपने अपना कहा कि आचार्यों का कहा? सुनिए तो, मिथ्या दृष्टि की परीक्षा भी मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता, मिथ्या दृष्टि की परीक्षा भी सम्यक दृष्टि द्वारा ही होती है। सो पहले परीक्षा करने के पहले सम्यक दृष्टि बनने की कला सीखो, ग्रंथ ग्रंथ लिखने की कला सीखे भी हो तो भूल जाओ, अगर आपकी हित करना है तो।
हाँ
क्यों नहीं देंगे? उसमें जब अभिप्राय आचार्यों का लिखा हुआ है तो भले किसी व्यक्ति ने लिखा हो, वो व्यक्ति को देखकर हमें बहुमान नहीं करना है, सिद्धांतों को देखकर बहुमान करना है। अगर वे सिद्धांत आगम परंपरा से मेल खा रहे हैं तो वो आगम ही है। क्या कहा? उसका अभिनय नहीं कर सकते।
आपका अभिप्राय ऐसा लगता है कि माल बना हो जापान में और इंडिया में आया तो लिख दिया मेड इन इंडिया, ऐसा नहीं होना चाहिए,
ऐसा नहीं हो सकता, वो माल उसी का ही। और ज्ञानी जो लिखते हैं वे उनके पास पूरी परंपरा का भी ज्ञान रहता है, सब सिद्धांतों को वो जानते हैं और अपनी भाषा में उन सिद्धांतों को लिखते हैं, तो वो भी आगम है। क्या कहा, आज ये समाचार सिद्धि है, एक प्रवचन है, समझाया, प्रवचन में काय के प्रवचन, मूल गाथाओं के प्रवचन है, एक कुंद कुंद की वाणी है, व्याख्या करने से वो वाणी वाकई में देखा जाए तो दूसरे की नहीं हो गई, सिद्धांत तो वे हैं जो कुंद कुंद ने निरूपण किए हैं, इस कारण से ये भले सम्यक दृष्टि के द्वारा कथित क्यों न हो या लिखे गए हों या छपाए गए हों तो भी वो जिनवाणी है और जिनवाणी जैसे वंदनीय है,
ये बात है। दूसरी गुरुदेव श्री के प्रवचनों में बार बार आता है ओ कुंद कुंद अमृत चंद्राचार्य तो सर्व पूर्ण आरतिया थे,
हाँ आरतिया सर बोलते हैं, आड़किया का शब्द का प्रयोग किया था, आड़किया जानते किसको कहते हैं, इसलिए इसमें ये बात नहीं चलेगी, ना कुतर करना भी नहीं है अपन को, अपना काम तो प्रयोजन साधने का है, अपना काम तो आत्महित करने का है, वाद विवाद करने का नहीं है, नाटक समय साल में आएगा, वाद विवाद करे सो अंधा, सदगुरु कहे साज का धंधा, वादी मरे खोजी जिए सांची कहावत, सन्मान है।
क्या कहा,
अब खत्म आखिरी, क्या मिथ्या दृष्टि के लिखे हुए पुस्तक का भगवान जिनवाणी की तरह कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हो गया संचित न हो
भूल होने की संभावना रहती है,
अरे मिलावट कर दी है, मिलावट जब हो गई वो कहाँ रहा प्योर माल, वो माल ही खोटा हो गया, हाँ नहीं है गोशास्त्र,
जब दृष्टि ही मिथ्या है और वो अपना अभिप्राय डाल रहा है, इसका मतलब हो गया
अब टोडर मल जी ने लिखा है कि अपना अभिप्राय जिनवाणी में मिलाने वाले पापी हैं, ऐसा लिखा है, पापी हैं ऐसा लिखा है, पहले अध्याय में लिखा है, लो
आगे ले,
हाँ आप लोग जल्दी थोड़ा साथ में लेते जाओ, सब हो जाए,
जो जाने एवं प्रणन है उसे समय जीव कहते हैं, यहाँ किस प्रकार के प्रणन की बात है, जो मैंने सात बोल के द्वारा समय शब्द की व्याख्या विवेचना जो अमृत चंद्राचार्य ने कही है किए उसमें ही उस समय के भेद दोड़ते स्वय समय पर समय, यानी स्वय समय जो शब्द लगा वो परिणाम सहित है, दृष्टि समय दृष्टि सहित कला ये सब चीज, तो उसमें जो जाने एवं प्रणन है तो समय शब्द में सम प्लस है एक साथ, और एकत्व धातु जाने और प्रणन है एक साथ, एकत्व पूर्वक की महत्वपूर्ण बात है, एक साथ जाने और प्रणन करे तो ऐसा खुदगल आदि भी प्रणन करते हैं लेकिन उनमें जानन क्रिया नहीं है, इसलिए जीव पदार्थ को ही समय शब्द कहा गया। यहाँ किस प्रकार के प्रणन की बात है, स्वय समय में लेंगे तो स्वभाव अनुभव स्वपर भी विज्ञान के छात्र की प्रणवन की बात है, यानी अंतर में शुद्ध प्रणति उसके चालू रहती है, यानी उसके संवर चालू है, भेद विज्ञान से चालू है, स्वयं समय की बात नहीं। एक और प्रश्न है, आपने अर्थ समय शब्द समय और ज्ञान समय का नाम उल्लेख तो किया, कृपया इनके अर्थ भी समझाइए,
बता दो बहुत जल्दी,
इस जगत में जो ज्ञान है वो जानता है ठीक है, और जगत में क्या क्या दिखाई देते हैं पदार्थ खुदगल, अभी अपने लेवल की बात करें, अब उन पदार्थों को बताने वाला शब्द होता है,
शब्द होता है,
तो आचार्यों ने कहा कि विश्व में पदार्थ माने अर्थ समय, समय माने क्षेत्र बतलाए थे ना, चौंद्र भी उसमें आते हैं जो तीसरी गाथा में आने वाला है, और शब्द उसका वाचक होता है, वाचक में पदार्थ नहीं होता, पदार्थ में वाचक नहीं होता
ठीक है,
लेकिन वाचक वाच्य संबंध होता है, जीव शब्द बोला, जीव शब्द में जीव नहीं, और जो जीव पदार्थ उसमें जीव शब्द नहीं है, तो इस प्रकार से शब्द समय भी है, इसलिए इसको द्रव श्रुत जो कहा है ना, ये शब्द समय श्रुत स्कंद कहा है, और इसके माध्यम से अपन ये सब निमित्त बनता है जानते हैं, और जो ज्ञान जानता है किसको, पदार्थ को भी, वाचक शब्द को भी, और स्वयं ज्ञान स्वामी आत्मा, जो ज्ञान ज्ञान को नहीं जाने और कहे मैं पर को जानता हूँ तो वो ज्ञान ज्ञान में भी नहीं गर्वित होता, इस प्रकार का है। ये विस्तार तो बहुत है, इनके तीन नए भी कहे
नहीं, बड़ी सरल इसकी आपका ये तीन प्रकार के पेन है, सुन लो जरा। इसका नाम क्या है? पेन। तो ये हो गया शब्द पेन, जो आपने बोला वो क्या हो गया? शब्द पेन। आपने पेन शब्द बोला तो हो गया शब्द पेन शब्द, और फिर इसका नाम, इस वस्तु को जाना, पेन नाम की वस्तु को जाना, वो अर्थ पेन। कौन सा पेन? अर्थ पेन। और जानने में जो आया वो ज्ञान पेन। कितने हो गए? तीन। अब ये समय पे लगा लो, समय शब्द बोला तो वो हो गया शब्द समय। समय का वाच्य आपने जाना, ये असंख्यात प्रदेशी चैतन्य क्या एक आत्मा, ये समय है, तो ये आपका हो गया अर्थ समय। और इसका आपने ज्ञान किया, अनुभव किया,
वो ज्ञान ज्ञान से माने वाच्य शब्द को श्रवण इंद्रिय से सुना, तो ज्ञान ने उसको जाना, उसके वाच्य को जाना। जैसे कहा सर ने लू का लो और यहाँ ज्ञान में जाना गया, ये चित लो और वो बाहर का लो, तो वो ज्ञान सुना ने ज्ञान ज्ञान में वो पदार्थ जाना गया। और आगे एक और अगर समाप्ति कर दे छोटा सा, आज आपने समय सार गाथा दो के आधार से प्रमाण के विषय स्वयं समय का वर्णन किया, क्या वेद विज्ञान की प्राप्ति के लिए इतना ही जानना पर्याप्त है? समय कम था भी तो पहले समय की प्रमाण की स्वरूप स्थिति क्या है, समय की वो बात बतलाएंगे। वेद विज्ञान के लिए तो आगे आएगा, जब वेद विज्ञान होगा तभी स्वयं समय का जन्म होगा, और अन्यथा तो वो पर समय में चली राज बना भी। तो वेद विज्ञान इसलिए होता है जो उसमें आया, अस्थि के पांच गुण बताए थे, उत्पाद वेदम सत, उपयोग लक्षणम, सद्रव लक्षणम, गुण परे द्रव्यम, स्वपर प्रकाश करते, और बाकी जो दो गुण थे वो पर द्रव्य गुण पर्याय रहित हूँ, पर द्रव के गुण पर्याय से मैं रहित हूँ, और अन्योन प्रवेश रहित हूँ, और अन्य में इसका गुण उसमें चला जाए उसका उसमें चला जाए, समयाभाव के कारण उसको एलिबोरेट नहीं किया था मैंने, कल उसको ले लिया। तो इस प्रकार से ये वेद विज्ञान की प्राप्ति होती है, अगर एक बार आपको अपने घर का एड्रेस मिल जाए तो पर घर में तैर नहीं जाएगा। एक और बात, एक किसका प्रश्न है, भेद विज्ञान में अभेद हो सकता है कि भेद, कृपया स्पष्ट करें। भेद विज्ञान में, भेद विज्ञान अगर पर्याय रूप आप ले रहे हो, भेद विज्ञान हो गया जिसका था ना संवर्धन, अभेद हो सकता माने पुरुष अनुभव के काल में तो अभेद ही हो, अभेद कोई भेद नहीं, और कुछ काटा जाता है तो क्लियर नहीं हो। चलिए जो भी देवा
तमें कहूं कि ज्ञान नो स्वभाव अनेकांतिक छे अने दृष्टि एकांतिक छे, तमें एम पण कहूं कि ज्ञान दृष्टि ने विषय आपे छे, तो शुं अनेकांतिक ज्ञान माथी दृष्टि पोते एकांतिक विषय में पोतानुं अहम पण करी ले छे, के अनेकांत माथी एकांत ने शोधी आपवानुं कार्य पण ज्ञान ज करे छे, आत्मद्रवी जो है वो अनेकांतिक है, तो अभी तो वो उसमें अनेकांतिक है माने वो प्रमाण ज्ञान का विषय है। प्रमाण ज्ञान का जो विषय है वो ज्ञान प्रधान से यदि तुम देखो तो ज्ञान प्रधान में भी दो प्रकार आते हैं, एक अध्यात्म ज्ञान प्रधान और एक आगम ज्ञान प्रधान। आगम अध्यात्म ज्ञान प्रधान से देखो तो आत्मा द्रव्य है, चेतन द्रव्य है, और उसको चैतन्य रूप का परिणाम ही चलता है, वो दो को भिन्न भिन्न तरीके देखना वो प्रमाण ज्ञान है। मगर कौन सा प्रमाण है, कौन सा ज्ञान है? या अध्यात्म प्रमाण ज्ञान या तो दृष्टि प्रधान प्रमाण ज्ञान, दृष्टि प्रधान ज्ञान ऐसा कहा जाता है। वो एक जो जीव द्रव्य है वो शुद्धता भी रूप से परिणमता है और अशुद्धता रूप से भी जीव ही परिणमता है, वो कोई भूतगल नहीं परिणमता है। अशुद्धता की योग्यता जो है वो पर्याय का स्वभाव है, वो विभाव स्वभाव जीव का है, वो जीव के सब भाव है। इस प्रकार से यदि आपका आत्मद्रव्य को जाने, द्रव्य और शुद्ध और अशुद्ध पर्याय सब आत्मद्रव्य का ही भाव है, इस प्रकार से यदि आत्मद्रव्य को जाना तो वो आगम प्रमाण ज्ञान है। तो इस प्रकार से जो अनेकांतिक ज्ञान है तो वो तो सबको जानता है, द्रव्य को भी जानता है, वो शुद्धता जो चैतन्य में परिणाम है उसको भी जानता है, अशुद्धता जो प्रकट होती है उसको भी जानता है, उसका जो निमित्त है कर्म उसको भी जानता है, वो जिससे वो बंधा हुआ है नौकर्म है तो मैं शरीर वाला हूं मैं मनुष्य ऐसा भी जानता है, और लोकानों को जानता है। ज्ञान का काम तो सबको जानने का है, इसलिए वो अनेकांतिक है। अनेकांतिक है मगर उसमें से जो अपना दृष्टि का विषय क्या, इसके ऊपर अपने को एकाग्र होके अपने आत्मद्रव्य को जानने से अपनी आत्मा की प्राप्ति हो। ये सबको जानने में रुकने से वो आत्मद्रव्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वो पर्याय को जानने में अनाधिकार से रुका हुआ है, तो पर्याय दृष्टि है, तो पर्याय वो जिसको जानता है उसकी दृष्टि हो जाती है। वो आत्मद्रव्य को जाना नहीं है तो आत्मा की दृष्टि नहीं होती है। वो आत्मा को जब जानता है तभी आत्मा की दृष्टि होती है। तो वो ज्ञान फिर विवेक करता है, सब ज्ञान विवेक का काम जो है वो ज्ञान करता है। दृष्टि वो विवेक नहीं कर सकती है, जो ज्ञान है वो ही सबका विवेक करता है, सबको जानता है और सबको विवेक करके जानता है। जो अनादिकाल से एक आत्मद्रव्य को द्रव्य और पर्याय दोनों को नहीं जाना है, इसलिए वो एकांत से वो पर्याय में मूड है। अभी वो सबको जानता है, वो द्रव्य का जो स्वभाव है वो भले उसका अनुभव नहीं हो है, मगर फिर भी वो जब नई निश्चय प्रमाण से वस्तु का निर्णय करता है तब जानता है, तो उसमें ही वो ज्ञान विवेक कर लेता है कि ये जो अपना द्रव्य स्वभाव है उसकी महिमा को अद्भुत है, वो अलौकिक है। तो वो उसमें मुख्य हो जाता है, वो मुख्य हो जाता है और उस तरफ उसका वलन हो जाता है, और पर की सन्मुख जो अनादिकाल का था उसका वलन वो उससे पीछे हटके उससे वेदना करके ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये विभाव है, ये परद्रव्य है, इस प्रकार से वो एक एक जो एक समय की पर्याय है वो भी एक क्षण पूर्ति रहने वाली है। उसके पास वो तो जिसमें से वो प्रवाह आता है वो जो द्रव्य का जो का पिंड है, द्रव्य की जो पर्याय की खाण है उसके ऊपर वो उसका जो स्वभाव है वो तो अनंत गुणा सामर्थ वाला है। इस प्रकार से ज्ञान सब विवेक कर लेता है तो दृष्टि उसको भी ग्रहण कर लेती है। वो दृष्टि का विषय भी ज्ञान ही देता है, माने वो उसमें कौन सा विषय है वो मुख्य है, वो आश्रय करने योग्य है, वो जो है वो ज्ञान निश्चय करता है। वो ज्ञान निश्चय करता है तो दृष्टि उसको ग्रहण कर लेती है, क्योंकि दृष्टि एकांतिक है। दृष्टि दोनों को विषय ही कर सकती है, ये शरीर को भी विषय करे कि मैं शरीर हूँ और मैं राग हूँ, मैं एक समय की पर्याय हूँ और द्रव्य हूँ। इस प्रकार का ये जो ज्ञान सबको जानता है उसमें से चुनना एक को है दृष्टि को, दृष्टि सबको विषय नहीं कर सकती है। तो वो ज्ञान ने जब ऐसा निश्चय कर लिया, निर्णय कर लिया कि ये जो द्रव्य है वो मूल आत्मद्रव्य है, जो अपना द्रव्य स्वभाव है और परिणामी निष्क्रिय शुद्ध ज्ञान भाव है वो मूल द्रव्य है। इस प्रकार से उसको मुख्य पड़े ज्ञान में जान, ज्ञान में प्रमाण ज्ञान में से एक निश्चय नहीं को उसको न्यायाधिपति कहा है। न्यायाधिपति नहीं से सबको जानता है, एक एक विषय को जानता है और प्रमाण से सबको जानता है। इस प्रकार से सबको जानने के बाद में वो ज्ञान जब उस अपने द्रव्य स्वभाव को परम पारिणामिक भाव को जाना और उसको मुख्य पड़ने जाना कि यही मूल आत्मद्रव्य है, तो दृष्टि उसको विषय कर देती है।
प्रमाण पूर्वक
प्रमाण पूर्वक ही होती है। प्रमाण के बिना यदि नहीं का यदि प्रयोग करेंगे तो वो एकांतिक, वो अभी बोला कि वो निरपेक्ष नया, निरपेक्ष नया वो मिथ्या है, वो सापेक्ष नया वो प्रमाण पूर्वक यदि नहीं हो तो वो समय कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि पर्याय का निश्चय का अर्थ कृपया स्पष्ट कीजिए और इस संदर्भ में द्रव्य का निश्चय क्या होता है वह भी बताइए। वो पर्याय का निश्चय, पर्याय का निश्चय की बात जो है वो चली का कि चेतन का है वो अन्य द्रव्य का नहीं है, बुद्धल का है कि नहीं। यदि बुद्धल का हो चेतनता, यदि बुद्धल का हो ज्ञाता द्रव्य है वो इस टेबल का हो तो टेबल का ही हो जाएगा। जो द्रव्य जिस भाव का हो आत्मा का ज्ञान है वो यदि बुद्धल का हो तो बुद्धल ही हो जाएगा, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो आत्मा का ज्ञान जो है वो बुद्धल रूप नहीं होता है, तो फिर आत्मा का ज्ञान किसका है? तो आत्मा किसका, किसको चेतने वाला है, किसको जानने वाला है, किसको देखने वाला है? कि चेतयिता का चेतयिता है। पहले ये परद्रव्य के साथ अपना कुछ संबंध नहीं है, इस प्रकार का असद्भूत विवाह का निषेध करना पड़ेगा, क्योंकि उसको भ्रम है कि ये सब इसका ज्ञान है। मेरे को ये सामने ये घड़ी दिखती है, ये सब चीज दिखती है, ये टेबल दिखता है, ये माइक दिखता है, ये सब दिखता है, तो वो असद्भूत विवाह का पक्ष है। उसका निषेध करके वो किसका ज्ञान है कि चेतयिता का चेतयिता है, वो अपने ज्ञान है। इस प्रकार से अपने ज्ञान के भेद में यदि आ जाए तो सद्भूत विवाह में आता है। मगर उस प्रकार का चेतयिता का चेतयिता माने क्या है कि आत्मद्रव्य जो है वो ही मेरे ज्ञान में अनुभव में देखने में जानने में आ रहा है। इस प्रकार से ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय है वो सब मेरे ही भेद है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय सब मेरे ही भेद है। इस प्रकार से जब अपने आत्मद्रव्य को भेद रूप से ग्रहण करता है तो सद्गुत व्यवहार के पक्ष में आता है, वो सद्गुत व्यवहार में आता है। फिर भी वो भी व्यवहार है, उसमें साध्य किसी भी कुछ नहीं है, वो सब विकल्प की बातें है, सब बातें ठीक है, सब समझने के लिए ठीक है कि सद्गुत व्यवहार नहीं है, वो मेरा नहीं है, ये मैं इसको नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं उसको जानू तो मैं इस रूप हो जाऊँ, तो आत्मा आत्मा को जानता है, तो वो सब भेद हो गया। इसका निषेध करने के लिए इस भेद में आता है, फिर इसका निषेध करने के लिए जब वो अभेद आत्मद्रव्य रूप से परिणम जाता है, वो चेतयिता को चेतयिता ही है, इस प्रकार से जब वो अपने आत्मद्रव्य को अनुभव करता है, जानता है, तब वो पर्याय का निश्चय प्रकट होता है। इस प्रकार से उसमें सब समझाया है और उसमें पर्याय का व्यवहार भी समझाया है। आत्मद्रव्य जो है वो चेतयिता तो चेतयिता ही है, इस प्रकार से अभेद अपने आत्मद्रव्य को जब अनुभव करता है तो वो ज्ञान जो है वो सफल प्रकाशक भी है, उसका भेद नहीं करता है, मगर वो ज्ञान सफल प्रकाशक है और अपने आत्मा को अनुभव करता है, ऐसा भी है, मगर उसका कोई भी भेद नहीं करके वो भेद आत्मद्रव्य को जानना और अनुभव करना वो पर्याय का निश्चय है। और उसी पर्याय को वो जब सफल प्रकाशक है तो स्वर पर सबको प्रकाशित करता है। इस प्रकार का जो उसका भाव है, उसका जो परिणाम है, उसमें परद्रव्य भी जानने में आ रहा है, तो परद्रव्य को जानता है ऐसा कहना वो पर्याय का व्यवहार है। वो उसमें सब जितनी गाथा निश्चय की लिखी है उतनी ही गाथा व्यवहार की भी लिखी हुई है, कि पर्याय का व्यवहार क्या है वो भी सब समझाया है। वो तो पूरे का पूरा स्थिति का गाथा जब आप देखे तो उसमें खुला कर दिया जाता है। इस संदर्भ में द्रव्य का निश्चय क्या होता है वो भी बता दीजिए। वो अभी 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 ये भाई साहब ने बताया था कि द्रव्य दो प्रकार के, प्रमाण का द्रव्य और एक निश्चय का द्रव्य। तो द्रव्य का निश्चय क्या है, वो निश्चय का द्रव्य क्या है कि अपरिणामी द्रव्य जो है वो निश्चय का द्रव्य है, और जो द्रव्य और पर्याय दोनों को जानने वाला प्रमाण ज्ञान है। तो इस प्रकार से जो अपने अपरिणामी द्रव्य को जानता है वो निश्चय का द्रव्य है।
प्रश्न बता सवर अधिकारी 181-182 गाथा है, 70 गाथा है, 4-5 प्रश्न एक खाते वाँची लो छू। उपयोग अर्थात जानन क्रिया और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रण पर्याय એટલે પણ જાણન ક્રિયા, આ જાણન ક્રિયામાં ઉપયોગમાં બિરાજમાન છે, અમને આ 12 ભગવાનનો ઉપયોગ સામાન્ય તો છે જ, પરંતુ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર નથી, તો અમને ઉપયોગમાં આત્મા જણાઈ રહ્યો છે। યદી ગાથા 17-18 ઓર 181-182 કા ભાવ સમજમાં આવ્યા તો ઓર કુછ પઢના જરૂરી હૈ યા ઇસમે હી બેન જ્ઞાન કી પ્રાપ્તિ હો સકતી, વરફ અનુભૂતિ કા ક્યા અર્થ હૈ ઓર વરફ કબ ઓર કેસે હોતી। 181-182 गाथा का भाव हमें ख्याल में तो आ रहा है, प्रश्न सिर्फ यही है कि हम अब हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग कैसे लावे जिसकी हमें जैसे हमें समय दर्शन की प्राप्ति हो सके। 181-182 गाथा में आचार्य की और पूज्य गुरुदेव जी ने दृष्टि प्रदान दृष्टि के विषय की बात की है। पूज्य गुरुदेव जी के आत्मा आसन के प्रदेशों જ્યાં એના એક એક પ્રદેશના ઉપરના ભાગમાંથી પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે, અત્યારે આપણી પર્યાય વિકારી છે, જયારે આપણને કેવળ જ્ઞાન થશે ત્યારે પરિપૂર્ણ શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટ થશે, તે ઉપરના પ્રદેશ પરથી વિકારી ભાવ નીકળી જશે અને તે પ્રદેશ ઉપર પરિપૂર્ણ શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટ થશે। આ વાત બરોબર છે, એ જો પૂરા વિષય મેં આયા હે સંવર અધિકાર કી ગાથા કા હૈ ઓર 17-18 ગાથા હૈ। इसमें ऐसा है कि संवर अधिकार की गाथा है, उसमें संवर कैसे प्रकट हो गए उसकी मुख्यता की बात करी है, और 17-18 गाथा है उसमें वो जीव अधिकार में आत्मा का ज्ञान और आत्मा कैसा है वो बताने की व्यवस्था है। तो आत्मा अनुभूति स्वरूप आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है, वहां भी अपन लक्ष्य दर्शन की बात उसमें घटा सकते हैं, और यहाँ जो 181-182 गाथा है उसमें पहली दो गाथा में लक्षण की बात है, और दूसरी गाथा तीसरी गाथा जो है उसमें जो शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, शुद्ध उपयोग या तो शुद्ध परिणति उसकी बात है। एक तो ये बात है, दूसरा यहाँ इसमें लिखा है कि ये गाथा का भाव हमें समझ में आ जाए तो दूसरा पढ़ना जरूरी है कि नहीं। ऐसा है कि आचार्य भगवान का जो शास्त्र होता है और उसकी जो भी गाथाएं होती है उसमें कोई गाथाएं अप्रयोजनभूत नहीं होती, सभी गाथाएं प्रयोजनभूत होती है, जो कोई गाथा व्यवहार की होती है वो निषेध करने के लिए प्रयोजनभूत होती है और निश्चय की गाथाएं होती है वो आदर करने के लिए प्रयोजनभूत होती है। इसलिए सबसे पहले पढ़ना बंद करना, सुनना बंद करना ऐसी कोई बात नहीं होती है, इसमें निर्णय की बात होती है। अगर तत्व निर्णय सही है तो वो निर्णय के बल से ही उसका काम होता है, उसमें पढ़ना बंद कर देना और बांटना बंद कर देना ऐसा कोई उपदेश नहीं दिया जाता। और यही गाथा से ही आपकी प्राप्ति हो जाएगी ऐसा भी नहीं होता, व्यवहार की गाथा से भी निश्चय की प्राप्ति होती हो सकती है। व्यवहार का निषेध करता है जीव तो निश्चय में आ जाता है, और निश्चय की गाथा में निश्चय का आदर करता है तो भी व्यवहार को उदास करके और निश्चय में आ सकता है। परोक्ष अनुभूति का क्या अर्थ है? परोक्ष अनुभूति इसे बोला जाती है कि परोक्ष अनुभूति माने ये बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान जानने में आ रहा है और उपयोग में उपयोग है, तो वो क्या हुआ कि उसने अपने स्वरूप का ही लक्ष्य किया, ज्ञान और नायक के अलावा उसको कुछ याद नहीं आया तो वो ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान जानने में आता है ऐसा उसको सचमुच अंदर से भाव वासन होने लगे तो वो परोक्ष अनुभूति कहलाती है। और वो परोक्ष अनुभूति आगे बढ़ के उसका उसको सही मायने में ख्याल आ जावे तो वो प्रत्यक्ष होने में देर नहीं लगती, उसको परोक्ष अनुभूति बोला जाता है। स्विकल्प वो चर्चा अपन लेंगे, वो विषय पूरा लेंगे, ये प्रयोग की बात है। वो निर्णय जो इसको हो जाता है ना तत्व का, उसको प्रयोग सहज में चलने लगता है, प्रयोग को इसको व्यक्त नहीं करना होता। वो तो ये धर्म जो है, अध्यात्म जो है, आगम जो है, वो जीवन दैनिक जीने के लिए है, खाली सुनने के लिए याद रखने के लिए नहीं होता। समय 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 में जो अपनी दैनिक क्रियाएं चलती रहती है उसमें उसका भेदना निरंतर चलता रहता है, उसको बोला जाता है प्रयोग। प्रयोग माने कोई कुछ बैठ के प्रयोग कर लिया, उसको प्रयोग सचमुच में नहीं बोला जाता। जो अपनी रूटीन क्रिया है होती है उसमें वेदना चलता है, बहने भी उसका किचन में भी वेदना कर सकती है, पुरुष लोग है वो अपनी ऑफिस में भी वेदना कर सकते हैं। तो स्वर और पर का वेदना, पर में पर्याय से पर पदार्थ सब सब ले लेना, पर पदार्थ कर्म राजा दीपा इंद्रिय ज्ञान एक समय की पर्याय सब पर में ले लेना और त्रिकाली द्रव्य को स्व में रखना और वेदना की प्रवृत्ति चालू करना तो वेदना हो सकता है। 181 आचार्य श्री पूज्य गुरुदेव ने दृष्टि प्रदान दृष्टि के विषय की बात की है। यहाँ ज्ञान का उपयोग से बात चली है, ज्ञान का उपयोग में उपयोगवान प्रतिष्ठित है, जानन क्रिया से बात चली है। यहाँ ज्ञान के द्वारा दृष्टि का विषय बताने की बात ये गाथा में रखी गई है। ये प्रदेश वाली जो बात है कि ये निकार का प्रदेश निकल जाएगा और शुद्ध प्रदेश हो जाएगा, तो इसमें जो लिखा है कि ये बात बरोबर है तो ये बात एकदम बरोबर है, सही है। अभी ले गया तुम
उपयोग में जानन क्रिया में उपयोग में जानन क्रिया
वो चर्चा हो गई अपनी प्रवचन में कि उपयोग किसे बोला है और जानन क्रिया किसे बोली है। उपयोग का गुरुदेव ने अगर कैसा किया कि शुद्ध उपयोग, तो शुद्ध उपयोग जो है वो शुद्ध उपयोग निरंतर नहीं रहता है, जैसे निर्विकल्प दशा टूटती है उसकी तो उपयोग बाहर चला जाता है, परिणति लब्ध रूप ले जाती है, तो वो परिणति होती है उसको जानन क्रिया बोला है। और उपयोग जो होता है वो शुद्ध उपयोग बोला गया है, और जो वहाँ उपयोग में उपयोग है वो बोला है वो लक्षण की चर्चा है। पहले लक्षण की चर्चा है, लक्षण ख्याल में आता है तो शुद्ध उपयोग हो जाता है, शुद्ध उपयोग होने पर वो उसका निर्विकल्प दशा चलती है, निर्विकल्प दशा में से च्युत होता है तो शुद्ध परिणति और उपयोग बाहर चला गया तो विकल्पात्मक उपयोग हो गया, ऐसा वो विभाग हो जाता है उसमें।
आज आपने दृष्टि का पक्ष की बात की, कृपया इस शब्द की व्याख्या कीजिए, क्या दृष्टि का पक्ष भी हमें नहीं होना चाहिए? ये जो पक्ष की बात की है वो एकांत पक्ष की बात की है, पक्ष तो ऐसा ही है, जब तक वो जब निर्विकल्प अनुभव नहीं होता है तब तक अज्ञानी जीव को जो भी अपना स्वरूप का चिंतन करता है तब सातवें पक्ष चलता ही है, नई पक्ष ही है, एक एक नई से अभी अपना आत्मद्रव्य को विचार करता है। अतीन्द्रिय ज्ञान से सब पूरे का पूरा आत्मद्रव्य जैसा है उसका अनुभव में नहीं कर सकता है, अतीन्द्रिय ज्ञान से पूरा आत्मद्रव्य जैसा है ऐसा उसको नहीं जानना चाहता है, तो एक एक नई से ही एक एक उसके धर्म से ही आत्मा का वो जो विचार करता है तो उसके साथ में पक्ष चलता ही है, वो तो पक्ष चलता है और उसमें धरती का पक्ष यदि वही होना चाहिए, व्यवहार का पक्ष है वो तो अनाधिकाल से छुड़ाया है और निश्चय के पक्ष में लाया है, मगर ऐसा पक्ष में आए तो भी क्या है वो सब बात वो अलग बात है, मगर इसमें ये ज्ञान का जो स्वभाव है अपने आत्मद्रव्य में दृष्टि और ज्ञान दोनों काम कर रहा है, वो उसमें से यदि दृष्टि का बात जो है वही उपाधेय है, दृष्टि का विषय है वही यात्री करने योग्य है, इस प्रकार का भाव को ग्रहण करके यदि दृष्टि के विषय की ही बात कया करे और उसकी ही बात सोचा करे और उसका ही पक्ष कराया करे तो और ज्ञान के स्वभाव का जैसा स्वभाव है, ज्ञान का जैसा स्वभाव है जैसा अनेकांतिक स्वभाव है वो अवैध पड़े आत्मद्रव्य को अनुभव करता है, ज्ञान की पर्याय जो है वो अवैध पड़े आत्मद्रव्य को अनुभव करके द्रव्य परियात्मा को उसका अनुभव होता है, और ज्ञान का स्वभाव सफल प्रकाशक है, इस प्रकार का जो अपना ज्ञान का भाव है उसको नहीं ग्रहण करे और एकांत दृष्टि का पक्ष करे, ज्ञान का निषेध करके यदि दृष्टि का पक्ष करे तो उस पक्ष वो मैं अपने को नहीं करना चाहिए, इसमें दोनों हो सकते हैं, ज्ञान का यदि पक्ष करे तो ज्ञान के सब जानने के पड़के में ही अटक जाता है, ऐसा द्रव्य है ऐसा गुण है ऐसी पर्याय है, मगर उसको दृष्टि का विषय क्या है वो यदि नहीं उसमें से निकाले और उसका जैसा स्वभाव है ऐसा नहीं ग्रहण करे तो उसको ज्ञान का पक्ष कहा जाता है, वो भी एकांत पक्ष है, उसको वो भी नहीं करना चाहिए।
आवाज साफ नहीं, थोड़ा जोर से फिर से बोले, थोड़ा जोर से बोले, यही बोलो अभी यही
माइक थोड़ा डाउन
है, अब बोलो।
आज आपने कहा कि प्रमाण न ये उपाधेय दोनों को भिन्न रूप से एवं अभिन्न पदे भी जानता है, प्लीज क्लेरिफाई दे, तो प्रमाण न ये उपाधेय माने वो द्रव्य है और पर्याय है दोनों को जानता है, प्रमाण ज्ञान जो है वो द्रव्य को भी जानता है और पर्याय को भी जानता है और दोनों को भिन्न रूप से जानता है, दोनों को दो रूप से जानना, द्रव्य को द्रव्य रूप से और पर्याय को पर्याय रूप से, इसमें अपन सब ले सकते हैं, गुण को गुण रूप से, शुद्ध पर्याय को शुद्ध रूप से, अशुद्ध पर्याय को अशुद्ध रूप से, निमित्त को निमित्त रूप से, सबको जानता है, वो सब प्रमाण ज्ञान का विषय है, ऐसे सबको भिन्न भिन्न रूप से जानता है, उसमें है क्या है और उपाधेय क्या है इस प्रकार से वो नए से जानता है, नई ज्ञान लगा के जानता है, अकेला खाली प्रमाण ज्ञान खाली जानने का विषय ऐसा नहीं है, उसमें भी यही उपाधि करता है, वो जो अब शरीर रूप जो अपना शरीर है उसको भी जानता है और उसको यही रूप से जानता है, जो अपने अपने पर्याय में जो रागादि प्रकट होता है वो भी यही है, और जो ज्ञान की पर्याय वो एक समय की है और अपना द्रव्य स्वभाव है वो आश्रय करने योग्य है, इस प्रकार से यही उपाधि रूप से जानता है।
अभी आवाज आ रही है आपको, सुनाई पड़ रहा है, कम आ गया हो
गया, दोनों को भिन्न रूप से एवं हमें जानता है, प्रमाण ज्ञान में दोनों को भिन्न भिन्न रूप से जानता है, प्रमाण ज्ञान जो बोल रहा है प्रमाण ज्ञान में किसको कहते हैं कि द्रव्य को द्रव्य रूप से और पर्याय को पर्याय रूप से जाने, तब वो दोनों को भिन्न भिन्न तरीके जाने उसका नाम प्रमाण ज्ञान है, वो दोनों को जानता है, मगर वो दोनों का जब 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 तक वो दोनों का भेद रहता है तब तब उसको विकल्प रहता है, जैसे छह कथा में कहा है कि आत्मा करता है और पर्याय कर्म है, इस प्रकार का यदि जब तक भेद रहा करता है तब तक वो उसमें कहने की स्थिति नहीं है। जैसे अभी अभी बात की किसी जी का भाषा में गए, वो जैसे ही करते थे कहता है उसमें कहने की स्थिति नहीं है। फिर वो मोक्ष मार्ग का मोक्ष निकलने का है कि जैसे ही था जैसे ही था है, जैसे ही था पता नहीं है, मगर जैसे ही था जैसे ही था है, जैसे ही था द्वारा जैसे ही को उसको जानता है, जानने वाले को जानता है, जानने वाले के लिए जानता है, इस प्रकार का जानने वाले में जानता है, इस प्रकार का जब तक भेद रहता है तब तक उसको साध्य की स्थिति नहीं होती है। मगर वो जैसे ही था तो जैसे ही था ही है, वो मैं जानने वाला हूँ, इस प्रकार से अवैध रूप से अपने को जानकर उससे परिणाम जाता है तब साध्य की स्थिति ऐसी होती है। इसलिए वो अवैध पहले भी जानना वो करके वास्तविक में वो ज्ञान का स्वभाव है। दोनों दो तो बीच है ही, वो एक वो परिय रूप नहीं होता है, वो परिय वो द्रव्य रूप से नहीं होती है। वो तो दोनों का जो अस्तित्व है वो तो भिन्न भिन्न तरह के जानता ही है। वो दृष्टि का विषय उसमें चलता है सुखे मने, वो तो ज्ञान जानता ही है, वो उसके साथ में दृष्टि दृष्टि चालू देती है। मगर वो ज्ञान उसको अवैध पड़े भी जानता है तभी वो अवैध पड़े जानने रूप से परिणम जाता है। इस प्रकार से वो अवैध पड़े भी जानना वो ज्ञान का एक प्रकार का स्वभाव है।
यहाँ चल रहे विषय में विषय से अलग एक छोटी बालिका का प्रश्न है। मैं उन प्रश्नों का जवाब देता हूँ जो पूछने वाला उपलब्ध हो तो। है क्या वो छोटी बालिका है क्या? हाँ चलो उसी बैठे बच्ची आपका जवाब दे रहे थे। जैसे राष्ट्र ध्वज के रंग किसी बात के प्रतीक, वैसे जैन ध्वज के रंग है ये किस बात के प्रतीक? पहली बात ये है जिनागम में कोई जैन ध्वज की कल्पना नहीं की गई। ये 1975 में भगवान महावीर का 2500 निर्माण महोत्सव मनाया गया था, तब ये पचरंगा झंडा चालू किया गया है और मुख्य बने ये पचरंगा झंडा श्वेतांबर जैनों ने चालू किया है और सब जनों ने उसके लिए एक महावीर जयंती का इकट्ठा रूप था तो स्वीकार कर लिया है। और उन लोगों ने जरूर एक मिथ्या कल्पना की है कि उसमें जो रंग दिए हैं उनको 5 परमेष्ठी का रंग बताया है और उसमें जो सफेद रंग है वो किसका बताया? वो सिद्ध भगवान का बताया। ये सारी बातें आगम विरुद्ध है, सिद्ध भगवान का रंग ही नहीं होता। ऐसे निराकार होते हैं, उनके तो आरोपी होते हैं, ये सारी कल्पनाएं यहाँ नहीं चल सकती। वैसे भी ये तात्विक प्रश्न है नहीं और ये आगम सम्मत प्रश्न नहीं है, न कोई ध्वज है न कोई उसकी प्रतीक की चर्चा जनागम में है। ये है उसका प्रश्न। इधर लिखते हैं, अभी एक क्वेश्चन आया भाई अभय जी के नाम का है, बहुत बढ़िया है। मगर आपने आज बताया कि परद्रव्य से अपने को भिन्न देखने से राग उत्पन्न ही नहीं होता है, क्या इसका हर अर्थ ये ऐसा होगा कि फिर ज्ञान और राग में प्रज्ञा क्षणी मानना जरूरी नहीं है, सिर्फ देह से एकत्र बुद्धि तोड़ने से ही आत्म प्राप्ति? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, किसका है? देनों में से है ना? हाँ ठीक, सुनो जरा बहुत बढ़िया समाधान करते हैं इसका। परद्रव्य से अपने को भिन्न देखने से राग उत्पन्न ही नहीं होता। राग स्वद्रव्य है कि परद्रव्य? किस में रखोगे? स्वा में रखोगे तो पर में, पर में तो पर में रखा तो राग भी तो आ गया ना, पर में आ गया ना। तो राग जब पर द्रव्य का भेद ज्ञान किया तो राग का भेद ज्ञान हो जाएगा उसमें कि छूट जाएगा? उसमें आ ही गया ना, वो राग परद्रव्य है। और परद्रव्य का भेद ज्ञान करने पर और उन परद्रव्यों से राग से हटने पर स्वभाव में जीव आ जाता है और स्वभाव में भी आ गए और विकल्प चले तो राग मौजूद है। इसलिए विकल्प के राग वाला राग टूट जाए तो आत्मा का अनुभव हो जाता है। इसलिए एक कथन में अभिप्राय को थोड़ा कहें तो ज्यादा समझ लें। और यहाँ लिखते हैं, आपने बताया कि विचार उपयोग के अधीन है, ऐसा पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, कृपया इसे थोड़ा स्पष्ट कीजिए। आ गया ठीक है ठीक है। और ये राकेश जी वाले हैं, इनको अपन बाद में देख लेंगे, अभी आपका कोई हो तो ये नहीं काल हो ये बचा के समाधान।
કેમ બોલો આ દાદા મે કોણ